પૂજ્ય બહેનશ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 71 અને 72 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 23.
નિર્ગ્રંથની દશામાં વર્ણન છે. સાધક જીવ સર્વસંગ પરિત્યાગ કરીને મુનિ દશામાં કેવી સ્થિતિ હોય છે એનું અનેકવિધ પ્રકારે ભિન્ન જગ્યાએ આ ગ્રંથમાં વર્ણન છે. નિદશા સંબંધી આ પહેલો કહેવાય છે. ધન્ય તે નિર્ગ્રંથ મુનિદશા. મુનિદશા એટલે કેવળ જ્ઞાનની તળેટી, નીચેના ચોથા ગુણસ્થાન પાંચમા ગુણસ્થાન વર્તી જીવને, સાધક જીવને મુનિદશાની ઉગ્ર ભાવના હોય છે. મેં સામાન્ય આર્થિક સ્થિતિમાં રહેનારા જીવને શ્રીમંતાઈની ભાવના હોય છે. મોટા મોટા શ્રીમંતો જોડે એના અનેક પ્રકારના રહેવાના હરવા ફરવાના મોજ શોખના સાધનો જોડે અમને પણ આવું હોય તો ઠીક એવું સામાન્ય રીતે અભિલાષા કરે છે. તેમ નીચેમાં સાધક જીવ પણ મુનિદશાનું બહુમાન કરે છે અને અંતરથી મુનિદશાની ભાવના ભાવે છે. અપૂર્વ અવસરે કાવ્ય સુમૃદ્ધિનો એનો નમૂનો છે. અપૂર્વ અવસર ગાયું અપૂર્વ અવસર એટલે એવી મુનિદશા પૂર્વે આ જીવને આવી નથી એવી ભાવલીન સહિતની નિર્ગ્રંથ મુનિદશા. તેમની વિદ્રાગતા જોઈને અહીંયા કહે છે કે ધન્ય તે નિર્ગ્રંથ મુનિદશા. આવી વિદ્રાગ દશા છે એ તો ધન્ય છે, ઉત્કૃષ્ટ સાધક દશા છે. આત્માને સાધવા માટે જેમને કોઈ પણ બાહ્યાભ્યંતર સંબંધ રાખ્યો નથી એ પહેલું પદે લીધું છે. સર્વ સંબંધનું બંધન તીક્ષ્ણ છે. જેને જગતના કેટલા જેટલા કોઈ સંબંધ છે તે સર્વ પ્રકારના સંબંધો છેદીને નહીં પણ તીક્ષ્ણપણે છેદીને કે જેથી એ સંબંધો ફરીને સંબંધપણે સ્થાપિત થાય. નિર્ગ્રંથનો અર્થ જ એ છે. જેને બાહ્યાભ્યંતર કોઈ ગ્રંથિ નથી તે નિર્ગ્રંથ, ગાંઠ નથી. ગ્રંથ ગ્રંથ એટલે ગાંઠ. સંબંધની ગાંઠ ક્યાંય પડતી નથી. દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી કોઈ પણ પ્રકારે જેઓ પ્રતિબંધપણાને પામતા નથી, અપ્રતિબંધ વિહારી ગણ્યા છે. મુનિને અપ્રતિબંધ વિહારી કયા છે. એમનો વિહાર એમાં કોઈની સાથે એમને પ્રતિબંધ હોતો નથી. અરે ધર્મના લોભી અને પીપાસુ જીવોની સાથે પણ એમને રાગનો પ્રતિબંધ થતો નથી. સાંસારિક સંબંધો તો છોડીને નીકળ્યા છે પણ બીજા કોઈ ધાર્મિક સંબંધોને લઈને રોકાવું થાય એ તો મુની દશામાં નથી. અત્યારે તો એવા મુનિઓના દર્શન નથી. એવા નિર્ગ્રંથ મુનિના દર્શન, મુનિનું નામ ધરાવીને મુનિના સ્થાનમાં ન હોયેલી પ્રવૃત્તિ તો કરે છે અને મુનિ માને છે, એ કાંઈ ખરેખર મુનિ માનવા લાયક નથી. અહીંયા તો જેવી ભગવાનના જ્ઞાનમાં મુનિ દશા છે, એમણે જે નિરૂપિ છે, કહ્યું છે, પ્રવૃત્તિ છે, અને પોતે પણ જે મુનિ માર્ગે ચાલ્યા છે, અષ્ટ પાહુરમાં તો એને જૈન માર્ગ કયો છે, એમ કે ચારિત્ર રાજમાર્ગ છે અને મૂર્તિમંત જૈન માર્ગ છે, જૈન માર્ગ પણ મૂર્તિમંત જૈન માર્ગ કયો છે. એવી નિર્ગ્રંથ મુનિ દશા ધન્ય છે એમ એટલા માટે કહ્યું કે નીચે સાધકજીને પણ એની અંતરંગ ભાવના થાય છે, એવી દશા હું ક્યારે પ્રાપ્ત કરું. મુનિ દશા એટલે કેવળ જ્ઞાનની તળેટી, આવી જે મુનિ દશા છે એ કેવળ જ્ઞાનની દશા, જેને શિખર કહીએ, કોઈ પર્વત કહીએ કે જ્યાં ચડવું છે, એની તળેટી સુધી પહોંચેલો જીવ છે મુનિ દશામાં. હવે શ્રેણી માનશે એટલે કેવળ જ્ઞાન સુધી પહોંચશે. કેવળ જ્ઞાનની તળેટી સુધી આવી ગયા છે મુનિ, એટલે કેવળ જ્ઞાનની તળેટી સુધી આવી ગયા છે. મુનિને અંદરમાં ચૈતન્યના અનંત ગુણ પર્યાયનો પરિગ્રહ હોય છે, વિભાવ ઘણો છૂટી ગયો હોય છે. પરિગ્રહ સંબંધી કઈ વાત ચાલી છે, પરિગ્રહનો બોલ લીધો છે. અનેક ગુણ છે, મુનિ તો અનેક ગુણથી વિભૂષિત છે, તેમાં અપરિગ્રહ પણ કિંચિત માત્ર કોઈ પણ પ્રકારનો જેમને પરિગ્રહ હોતો નથી બાહ્ય અને અભ્યંતર. છતાં એ નિષ્પરિગ્રહ અને પરિગ્રહ ગણીએ તો શું હોય છે એમ લીધું છે. એ નિર્ગ્રંથ મુનિને અંદરમાં ચૈતન્યના અનંતગુણ પર્યાયનો પરિગ્રહ હોય છે, પોતાના અનંત ગુણ સાથે રહેવાપણું છે અને તેને અનન્ય ભાવે ગ્રહવાપણું છે, પોતાના ગુણોની વિકસિત દશા એના ભોગવવાપણું છે, તેથી એમને ગુણ પર્યાયનો પરિગ્રહ ગણવામાં આવ્યા. અહીંયા કહે છે કે મુનિ પરિગ્રહી છે, બે વિશેષણ લાગુ પડે છે, મુનિ નિષ્પરિગ્રહી પણ છે અને મુનિ પરિગ્રહી પણ છે. બહારમાં જગતના જળ પદાર્થોનો જેમને પરિગ્રહ નથી અને અંતરંગમાં કષાય ભાવોનો જેમને પરિગ્રહ નથી, પરિગ્રહ એટલે સારી રીતે ગ્રહ અક્કડ થઈ પરતત્વથી બાર અભ્યંતર ને બાર ભાઈ અને બાર અભ્યંતર ચોવીસે પ્રકારના પરિગ્રહથી રહી છે. પરતત્વની અપેક્ષાએ મુનિ નિષ્પરિગ્રહી છે અને પોતાના અનંત ગુણ પર્યાયની અપેક્ષાએ મુનિ પરિગ્રહી છે, એમ અનેકાંત છે, એ રીતે અનેકાંત છે. મુનિને અંદરમાં ચૈતન્યના અનંત ગુણ પર્યાયનો પરિગ્રહ હોય છે, વિભાવ ઘણો છૂટી ગયો હોય છે અને એક સંજલનનો કષાય રહ્યો છે, એ સિવાયના ત્રણ પ્રકારના ચારે કષાય ક્રોધ માન માયાલોક ચારે ત્રણ ચોપડી ખલાસ થઈ છે. અનંતાનુબંધીનો કષાય નથી, પ્રત્યાખ્યાન વર્ણિનો કષાય નથી, અપ્રત્યાખ્યાન વર્ણિનો કષાય બને. મુનિને અંદરમાં ચૈતન્યના આનંદ ગુણ પર્યાયનો પરિગ્રહ હોય છે, પણ વિભાવ તો ઘણો એકદમ શાંત શાંત અવકશાય દિશામાં મુનિ બિરાજમાન છે. બહારમાં સામાન્ય પર્યાયના સહકારી કારણભૂતપણે દેહ માત્ર પરિગ્રહ હોય છે, અંદરમાં અનંત ચૈતન્યના ગુણ પર્યાયનો પરિગ્રહ છે. બહારમાં સંયોગ ગુણો તો સામાન્ય પર્યાય સાધુપણાની જે અવસ્થા પ્રાપ્ત છે તેમને બહારમાં સહકારી કારણભૂત એટલે બાહ્ય સંયમને નિમિત્તભૂત કારણભૂત એટલે નિમિત્તભૂત એવું શરીર માત્ર પરિગ્રહપણે હોય છે. એ શરીર ઉપર બીજું કાંઈ એમને કોઈ પણ પ્રકારનું વસ્ત્રાદિ હોતું વસ્ત્ર ન હોય તો બીજું કાંઈ હોવાનો સવાલ રહેતો. સાધુ પણ જગતમાં જેટલા માણસો બહારમાં ત્યાગ કરે છે તેને સ્થૂળપણે લોકો સાધુ તરીકે ઓળખે છે. ખરેખર તો સાધુ છે એ ગુણવાચક નામ છે, એ કોઈ બહારની ત્યાગની દશાવાચક નામ નથી. પણ સાધે આત્માના આત્મ સ્વરૂપને સાધે, નિર્દોષતાને સાધે, ગુણ સ્વભાવને સાધે, આનંદને સાધે અને સાધુ કહેવામાં અને તે પણ ઉત્કૃષ્ટપણે સાધે તેને સાધુ કહેવામાં આવ્યા છે. એ ઉત્કૃષ્ટ સાધક દશામાં કોઈ પણ બાહ્ય પ્રવૃત્તિ પોષણ નથી, બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં પડવાની વૃત્તિ થતી નથી, રહેતી નથી અને થતી નથી. તેથી નિમિત્તપણે પણ બાહ્ય સંબંધો અને બાહ્ય પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ જોવામાં આવે છે. તેમને ફક્ત શરીર કે જે પૂર્વ આયુષ્ય કર્મના યોગથી સંયોગ રૂપે છે, આયુષ કર્મના ઉદયથી સંયોગ રૂપે છે, એટલો જ મુનિના આત્માને સંયોગ જોવામાં આવે છે. મુનિના આત્માને એથી વધારે કોઈ સંયોગ જોવામાં આવતો નથી, અને તે પણ મન વચન કાયાના સંયમ પૂર્વક હોય છે. એ દેહની સ્થિતિ પણ મન વચન કાયાના સંયમ પૂર્વક હોય છે, જેમાં બીજા જીવોની પણ હિંસા થતી નથી અને પોતાના આત્માની પણ હિંસા થતી નથી, એ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ હોય છે. લૌકિક કાર્યોમાં મુનિ પડે નહીં, કોઈ લૌકિક કાર્ય ન કરે, ન મંદિર બંધાવે કે ન ધર્મશાળા દવાખાના બંધાવે, ન બંધાવે ન બંધાવવાનું કોઈ કાર્ય કોઈની પાસે કરાવે અને ન કોઈ કરતા હોય તેને પ્રેરણા આપે. એ ત્રણેય વાત લઈ લેગી, કરવું કરાવવું ને અનુમોદન. બહારમાં સામાન્ય પર્યાયના સહકારી કારણભૂતપણે, સહકારી એટલે નિમિત્તભૂતપણે દેહ માત્ર પરિગ્રહ હોય છે, ફક્ત શરીર હોય છે સંયોગ, એ સિવાય બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ નહીં હોતી, કોઈ પણ પ્રકારનો પરિગ્રહ ન હોય. એને બેંકમાં ખાતું ન હોય પોતાના નામે કે બીજાના નામે, અત્યારે એ પરિસ્થિતિ સુધી પહોંચી છે બેંકના ખાતા પછી. એમાં હવે કોઈ સંપ્રદાયમાં બાદરીઓ નથી, કહેવાતા દિગંબર સંપ્રદાયથી માંડીને પોતાંબર સંપ્રદાયથી માંડીને અન્ય મતી તો બિચારા હોય એમાં કાંઈ પ્રશ્ન રહેતો આમ તો જેને વસ્ત્રનો પણ પરિગ્રહ ન હોય એને બીજો પરિગ્રહ રાખવા યોગ્ય છે કે બીજી પ્રવૃત્તિ કરવા યોગ્ય છે એ વાત રહેતી અને વસ્ત્ર ન હોય એનો અર્થ શું કે એટલી પણ વૃત્તિ નથી વસ્ત્રને અંગીકાર કરવા સુધાની પણ વૃત્તિ નથી એમ એમ છે કે પ્રતિબંધ રહીત સહજ દશા હોય છે કોઈ પણ પ્રકારના દ્રવ્યક્ષેત્રકાળ ભાવના પ્રતિબંધ વિનાની દશા હોય છે આ ક્ષેત્ર સારું છે તીર્થ ક્ષેત્ર છે માટે અહીંયા રહીએ સમ્યક શિખર છે માટે અહીંયા નિવાસ કરીએ એક મુનિ દશામાં હતો કોઈ ક્ષેત્રનો પરિગ્રહ નહીં ક્ષેત્રનો પ્રતિબંધ નહીં પ્રતિબંધ નામ રાગ જીવ રાગે રોકાય છે પછી બહારના સંયોગો તો એમાં રાગનું નિમિત્ત છે એ છે એનાથી વાત કરાય છે ખરેખર તો જીવ રાગથી રોકાય છે એમાં ક્ષેત્ર સંબંધિત રાગ કે કોઈ બીજા સાધર્મી મનુષ્યો સંબંધી રાગ એ દ્રવ્યનો રાગ છે કોઈ રાગ એના ભાવ સારા છે ધર્મના લોભી છે ને ઉપદેશ માટે મારી પાસે આવે છે એ પણ ભૂમિને રાગનું કારણ શું એ તો જ્ઞાતા થઈ ગયા છે ને જ્ઞાતા જ રહેવા માગે છે એમાં આ હો ન હો એવી એક વાત એના જ્ઞાનમાં નથી વિતરાગ પણ કહેવું કોને કે જેમાં બીજા પદાર્થનું હોવાપણું નહીં હોવાપણા હોવાપણાનો રાગ કે નહીં હોવાપણાનો દ્વેષ ઈષ્ટ અનિષ્ટનો પ્રકાર નથી જાય એનું નામ વિતરાગ પણ છે એને સમભાવ કહેવામાં આવ્યો છે ઈષ્ટ અને અનિષ્ટપણાના ભાવને વિષમભાવ કહેવાય છે અને એથી રહીત એવો જે વિતરાગ ભાવ માત્ર સાક્ષી ભાવ જ્ઞાતા ભાવ એને વિતરાગ ભાવ અથવા સમભાવ કહેવામાં આવે છે એ ખરેખર સમભાવ છે પૂર્વ અવસરમાં તો બહુ ગરીબ જીવિત કે મરણે નહીં જીતતા જીવન અને મરણમાં અમને સંભાવ છે ખરેખર તો લેવું છે સંભાવ પણ જીવન આયુષ્ય ચાલુ રહે કે આયુષ્ય પૂરું થાય તેથી આ આત્માને કોઈ ફરક પડતો નથી શાશ્વત એવો જે આત્મા એ દેહના સંયોગમાં પણ જીવોને જીવડો છે તેઓને તેવડો રહે છે શરીર છૂટે તો પણ જીવોને જીવડો છે તેઓને તેવડો રહે છે એમાં એ આત્માને કોઈ લાભ નુકસાન થતું નથી દેહ મોક્ષે પણ શુદ્ધ વર્તે સમજો એ વર્તમાનમાં પર્યાય ઉપર આવી અવસ્થા થાવ ને આવી અવસ્થા ન થાવ ભવ ચાલુ ન રહો અને મોક્ષ મારો જલ્દી થઈ જા એવો વિષમભાવ મુનિને વિતરાગ ભાવમાં ઉપસ્થિત થતો હિન્દી પુસ્તક ભી હૈ હિન્દી કહાં સે પધાર્યા 28 નંબર કા પુષ્ટ હૈ 28 પુષ્ટ इसमें 71 नंबर का पॉइंट है, मुनि दशा का वर्णन दिया है। निर्ग्रंथ मुनि दशा सर्वगुण जिनेन्द्र परमात्मा के मार्ग में दिन मार्ग में कैसा होता है, मुनि दशा का पर्याय कैसा होता है, इसका अंतर्बाह्य स्थिति कैसी होती है, इसका इधर वर्णन किया है। वर्णन ही मात्र नहीं किया है, बहुमान भी किया है। वहां से लिया है कि धन्य है वो निर्ग्रंथ दशा जिसको मायाभ्यंतर कुछ भी राग की ग्रंथि नहीं है, कषाय की ग्रंथि नहीं है, ऐसी जो वितरागी दशा है, ऐसी वितरागी दशा को हम प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं, इसलिए उसको धन्य कहने में धन्य कहने का मतलब क्या है कि ऐसी दशा हमको भी प्राप्त होवे, ऐसी मुनि दशा वो केवल ज्ञान की तलहटी है, केवल ज्ञान एक उत्कृष्ट शिखर है जिसमें पहुंचने की तलहटी है। वहां पहुंचने से सिर्फ ऊपर जाने का ही बाकी रहा, तो भूमि का आत्मा है वो केवल ज्ञान से ज्यादा दूर नहीं है। तलहटी करके क्या कहा कि केवल ज्ञान शिखर से ज्यादा दूर नहीं। जब वो श्रेणी शुरू करेगा आठवां नौवां दसवां दूसरा, उस श्रेणी में केवल ज्ञान की चढ़ाई चालू हो जाएगी। इसलिए मुनि दशा को केवल ज्ञान की तलहटी है यहां कहने में आई है। मुनि को अंतर में चैतन्य के अनंत गुण पर्यायों का परिग्रह होता है, बाह्य परिग्रह तिल तुष मात्र मुनि को होता नहीं। मुनि को दोनों विशेषण लागू होता है, परिग्रही भी कहते हैं और निष्परिग्रही भी कहते हैं। बाहर में जितना भी बाह्य तत्व है, जड़ संयोग और राग, उससे रहित होने से वे निष्परिग्रही है, और अंतरंग में अपने गुण स्वभाव की अनंत चैतन्य की संपत्ति होने से, और ये स्वभाव का विकास होने के होने से, आत्मगुण का विकास होने से ये समृद्ध दशा को परिग्रह दशा कहने में आई है। बहुत सामर्थ्यवंत है, उनको बहुत सामर्थ्य है। कितना सामर्थ्य है उसका नाप कोई बाह्य संयोग से नापा जाता नहीं, फिर भी लौकिक जनों को दिखाने के हेतु से कहने में आता है कि कितना भी परिश्रम हो, कितना भी कोई उत्सर्ग हो, मुनि अपने मार्ग से अपने ज्ञान ध्यान से विचलित होते ऐसे दिखाने में कोई प्रसंग दिखाने में, जैसे कोई सर्प काटता हो, कोई बिच्छू काटता हो, कोई वाघ सिंह मारता हो, फाड़ता हो, खाता हो, काटता हो, मुनि अपने ध्यान में विराजमान रहता है। उपयोग बार में आता है, पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, शरीर को ऐसा हो रहा है, मेरा अव्याबाध स्वरूप है, तो अव्याबाध स्वरूप में कुछ होता है, किसी की बाधा हो सकती है। मेरा चैतन्य एक प्रदेश को कोई स्पर्श नहीं कर सकते, कोई छू नहीं सकते, उसको कोई खा नहीं सकते, उसको कोई खंडित कर सकते। मैं द्रव्य क्षेत्र से अखंडित हूँ और भाव से मैं भी अखंडित हूँ। मेरा स्वभाव को कोई स्पर्श नहीं कर सकते, मेरा क्षेत्र को भी कोई स्पर्श कर सकते हैं। तो ये भी एक कहने की चीज है। निदशा का नाप यहाँ से भी पूरा होता नहीं, कहाँ तक दिखावे। लोगों को प्रतिकूलता से दिखाने में आता है, उसकी आखिरी लिमिट इतनी है कि शरीर को छेदन भेदन और शरीर का प्राण का छूट जाना, वहां तक की प्रतिकूलता होवे, फिर भी उन्हीं अपने भाव से अपने ध्यान से चलित होते हैं। अंतरंग में परमात्मा स्वभाव के साथ, निज परमात्मा के साथ इनका उपयोग इतना अभेद हो गया है, लपेट हो गया है कि वहां से छुड़ाने को कोई प्रतिकूलता में कोई सामर्थ्य होती इतना। अंतर में चैतन्य के अनंत गुण पर्यायों का परिग्रह होता है, पकड़ होती है। ग्रहना मैंने पकड़ना, परिग्रह मैंने अच्छी तरह से सुदृढ़ बने से पकड़ना, उसको परिग्रह कहने में आता। ऐसा अपना निज का परिग्रह होता है, अन्य का परिग्रह होता नहीं। विभाव बहुत छूट गया है, विभाव मैंने विकारी भाव, विकृत भाव, उसको विभाव भाव यहाँ कहा है, ये बहुत छूट गया है, बहुत कम रह गया है। विकृति बहुत कम रही है, निर्विकार दशा बहुत हो गई है, ऐसी निर्विकार दशा हुई है। अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने प्रवचन सार मुनि को मोक्ष तत्व कहा है। है तो ये साधक अभी भी अपनी साधक अवस्था में होते हुए भी मुनि को मोक्ष तत्व कहा है। तात्विक दृष्टि अगर देखने में आ तो बाह्याभ्यंतर कोई प्रतिबंध नहीं होने से बद्धभाव बंधाना, रोकाना, अटकना, ऐसा भाव मुनि को दृढ़ क्षेत्र काल भाव से नहीं होने से मुक्त दशा, मुक्तपणे वो विचरते हैं। जंगल में स्मशान में ध्यान करने को स्मशान में जावेगे, क्योंकि क्या वहाँ लौकिक जनों का आवागमन रहता नहीं, लोग डरते हैं स्मशान से, तो लोग डरते हैं जंगल से भी डरते हैं, एकांत से भी डरते हैं। वहाँ ध्यान में विशेष एकाग्र रहने के लिए वहाँ एकांत में चले जाते हैं। ऐसा विभाव बहुत छूट गया होता है, छूट गया है ऐसा नहीं है, छूट गया होता है, ऐसे ऐसे बड़ी बात मुनि, ऐसा होता है कि जिसको विभाव बहुत छूट गया होता है। विभाव और विकार में आकुलता भी उनका स्वभाव है, विकार का स्वभाव आकुलता है, और विभाव का नाश, विकार का नाश, इसमें आकुलता का नाश है, अनाकुल शांत भाव उसमें उपस्थित होता है। दिशा बहुत शांत दिशा है, हस्ती से लिए तो भूमि दिशा बहुत शांत दिशा है, इतनी शांत दिशा है कि जिसका जिसको दर्शन करने वाले को भी उसमें शांति का आविर्भाव उसको होता है। मुनि का दर्शन करने वाले को भी शांति प्राप्त होती है। इतना शांत परमाणु, शरीर के परमाणु भी शांत रस को प्राप्त हुआ है। अंतरंग आत्मा तो शांत रस में लीन है, लेकिन उनकी बाह्य दिशा में भी इतनी शांति व्यक्त होती है। आश्रम में तो बहुत प्रकार से वर्णन आता है, ये जो हरण होते हैं वो कोई भी प्राणी का किसी कितना भी थोड़ा आवाज आए, प्राणी का किसी कितना भी थोड़ा आवाज आए तो बग जावे। ध्यान में बैठते हैं तो समझता है कि कोई मनुष्य नहीं है, इतना स्थिर कोई मनुष्य, इतना निश्चंचल दिशा में कोई मनुष्य तो बहुत हो सकता नहीं है, ऐसा उनको भ्रांति हो जाती है। अपनी खास हो जाते हैं, जो नजदीक में नहीं जा रहे हैं वो वहां तक जाता है। फिर भी मुनि मुनि के मन वचन काया का परिणमन में चंचलता प्राप्त होती, इतनी शांत दिशा है। कल्पना वहाँ हिरण भी रखा है और बाघ व्याघ्र भी रखा है, इसका मतलब क्या कि ऐसे तो बाघ सिंह वगैरह प्राणी, सर्प अजगर वगैरह प्राणी बहुत क्रोधी प्रकृति के हिसाब से वो पर्याय को प्राप्त हुआ है, और वर्तमान में भी इस पर्याय में उसको क्रोध प्रकृति का बहुत तीव्र उदय रहता है। तो उस तीव्र क्रोध के वशीभूत निर्दोष प्राणियों को मारता है, मार जाता है, उस देखते ही उनको क्रोध आता है, उसने मार दिया। फिर भी वो मुनि को ध्यानस्थ देखते शांत हो जाता है, उनकी क्रोध की परिणति में भी थोड़ी शांति आती है। तो क्या है ऐसे तो मुझे देख के मनुष्य प्राणी दूसरे प्राणी भागने लगते हैं, ऐसा ये शांत मनुष्य कोई कैसा है उनको भी आश्चर्य में पड़ जावे। तो सोचता नहीं है, स्थिर है, शास्त्र लिखते हैं बराबर, एक ध्यान से लिखते हैं, ध्यान माँ बैठते हैं तो एक ध्यान से बैठते हैं वो विश्वास ठंडा हो जाता है, ऐसा उसमें संकेत। और ऐसा बनता भी है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा बनता भी है। बाद में श्रावण पर्याय के सहकारी कारणभूत पने से देह मात्र परिग्रह होता है, एक शरीर के अलावा दूसरा तीन पुरुष मात्र परिग्रह मुनि को होता नहीं। मुनि को मुनि होवे और परिग्रह होवे दो बात कभी साथ में बनती नहीं। भगवान सर्वज्ञ परमात्मा वो ऐसे मार्ग में चल के परमात्मा जिनेन्द्र सर्वज्ञ हुए हैं, उसने अपना अनुभव से ये बात को प्रसिद्ध की है, इसका उल्लंघन करने का भी किसी को अधिकार प्राप्त होता नहीं। बाह्य में सामान्य पर्याय के सहकारी कारण उत्पन्न है, अपनी जो संयम की प्रवृत्ति है मन वचन काया से जो संयमित रहना पंच महाव्रत समिति वृत्ति आदि 28 मूल निशा जो संयमित प्रवृत्ति है इसमें ही सहकारी कारणभूत होने से देह में उसका निमित पड़ता होने से सिर्फ देह होता है, दीर्घ देह से ज्यादा कोई परिग्रह नहीं होता नहीं। और प्रतिबंध रहित सहज दशा होती है और बाहर में किसी भी प्रकार का राग का रुकावट, राग होने से रुकना होवे, अन्य पदार्थ में रुकना होवे, ऐसा राग परिणाम मुनि को होता नहीं। विवाह छूट गया तुम्हें, राग है विवाह है, वहां तक का राग नहीं होता। सांसारिक राग तो होता ही नहीं, लेकिन धर्म का अनुराग भी बहुत मर्यादित होता है। ये तीर्थ क्षेत्र का क्षेत्र राग, साधर्मी जनों का राग और उस प्रकार का देव गुरु शास्त्र की प्रभावना के कारण जो होने वाली बाह्य प्रवृत्ति, उसमें भी जीव को रुकने का राग होता है। इसका आत्मा रुके ऐसा राग होता है। बाह्य धर्म की प्रभावना करने के हेतु से मुनि कभी चंदा फंदा करते हैं, न करते हैं न करवाते हैं न करने की प्रेरणा देते हैं। ये गृहस्थों का कार्य होता है। प्रतिबंध रहित सहज दशा होती है, शिष्यों को बोध देने का अथवा ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। दूसरा तो प्रतिबंध होता नहीं, लेकिन गृहस्थों को बोध देना और दूसरे मुनि जो शिष्य होवे उसको बोध देना, उसका कोई बंधन मुनि स्वीकार करते हैं नहीं? बंधन नहीं स्वीकार करते। न कोई बाह्य कार्यों की जिम्मेवारी अपने सिर उठाते हैं और न कोई बाह्य कार्य का प्रतिबंध उसको रहता है। आप जो मुनि हैं, आपको हर में सुबह इतने से इतने बजे तक व्याख्यान देना है, ऐसा मुनि को प्रतिबंध होता। वो अपने ज्ञान ध्यान में पड़े हैं, विकल्प आ जाए तो उपदेश निकले तो निकले, नहीं निकले तो नहीं निकले, वो अपने कार्य में पड़े हैं। ऐसा बाहर में किसी भी कार्य का प्रतिबंध, किसी भी कार्य की जिम्मेवारी मुनि दशा में लेने में आती नहीं। स्वरूप में लीनता वृद्धिगत होती है ऐसे मुनियों को। प्रति समय 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 में स्वरूप में लीनता वृद्धिगत बढ़ती रहती है। प्रति समय संवर होता है, प्रति समय निर्जरा होती है। निर्जरा का दूसरा नाम है शुद्धि की वृद्धि। तो स्वरूप में एकाग्र होने से मुनि को स्वरूप में समय समय में गुण श्रेणी निर्जरा करने में आई है। गुण श्रेणी निर्जरा वो तो वहां तक लिया है कि साधक सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हो, पंचम गुण स्थानवर्ती हो और निज स्वरूप में निर्विकल्प ध्यान में लीन हुआ हो, साधक है ना, उसको जो निर्विकल्प दशा में निर्जरा होती है, इससे असंख्य गुण श्रेणी निर्जरा, असंख्य गुण मल्टीप्लाइड बाय एक बार नहीं, दो बार नहीं, लाख करोड़ अरब बार नहीं, असंख्य बार, इतने गुण श्रेणी निजरा मुनि को आहार के समय में होती है, रहती है। आहार का विकल्प हो, भिक्षा का विकल्प हो, नगर में चले और आहार करते हो, सबला आहार एक पीछे एक पीछे एक रात का विकल्प चलता हो, उस काल में भी मुनि को अंतरम में गुण श्रेणी निर्जरा रहा। नीचे गुण स्थान वाले, ये छठे गुण स्थान में ये प्रक्रिया होती है, सातवें गुण स्थान में वो निर्विकल्प होते हैं, वो आहार करते करते भी हो जाते हैं, और विकल्प हो छठा गुण स्थान उस काल में भी, चतुर्थ पंचम गुण स्थान वर्ती निर्विकल्प ध्यान वाले साधक से भी इसकी गुण श्रेणी निद्रा असंख्य गुण होती, इतनी शुद्धि की वृद्धि प्रति समय मुनि को होती रहती। ऐसी जो निर्ग्रंथ दशा है, ऐसी निर्ग्रंथ दशा हमको भी प्राप्त हुए, ऐसी अभिलाषा से इस दशा को धन्य दशा कहने में आई, ऐसे यहाँ मुनि भगवंत की भक्ति की है, ऐसे मुनि की कुछ नंबर हुआ। अखंड द्रव्य को ग्रहण करके यहाँ से मुनि दिशा का थोड़ी थोड़ी बात चलेगी, आगे कुछ नहीं। अखंड द्रव्य को ग्रहण करके प्रमोद अप्रमोद स्थिति में झूले वो मुनि दशा, मुनि दशा किसको कहें? मुनि दशा कोई ऐसी चीज नहीं कि मात्र दीक्षा अंगीकार करने से मुनि दशा प्राप्त हो, किसी को सिर्फ मुनि दशा नहीं, लेकिन अंतर में जो परमात्म स्वरूप परमात्म द्रव्य है, आत्मा अप्पा को परम अप्पा, आत्मा जो परमात्म स्वरूप है जिसको यहाँ अखंड द्रव्य कहने में आया है, ऐसा अखंड द्रव्य को ग्रहण करके अखंड द्रव्य को में अभेद होने से प्रमत अप्रमत स्थिति में झूले, छठा गुण स्थान को प्रमत दशा कही है, जिसमें भी शुभ भाव मर्यादित है, मुनि को बाह्य राग में अशुभ राग तो किंचित मात्र होता नहीं। एक बात, जो भी बाह्य परिणाम है, परद्रव्य आश्रित परिणाम है, अन्य द्रव्य आश्रित परिणाम है, संयोग आश्रित परिणाम है, इसमें दो प्रकार है, एक शुभ और दूसरा अशुभ। तो अशुभ विकल्प अशुभ भाव तो मुनि को कतई होता नहीं, एक सवाल ही, लेकिन मर्यादित रूप में समिति युक्ति का जो मर्यादा रखा है, इतना ही बाह्य संयम का शुभ राग मुनि को होता है, उसको प्रमाद दशा भगवान ने कही, उसको प्रमाद कही। सनातन जिनमार्ग जो चला आया है उसमें चौदह गुण स्थान की जो परिपाटी है, उसमें छठा गुण स्थान का नाम अनादि है, प्रमत्त दशा कहने में आई है, इसको प्रमाद कहा। इसलिए प्रमाद कहा कि ये स्वरूप स्वरूप का ध्यान से, निर्विकल्प ध्यान से वो बाहर में उपयोग चला गया, इसलिए उसको प्रमाद कहा है। तो वो संयम सहित, इतना संयमित है कि केंद्रीय जीव की भी हिंसा न हो, इतना इसमें सावधानी और जागृतपना है, इतनी दरकार है इसमें, फिर भी उसको निश्चय से प्रमाद कहने में आया है। ये तो जैन मार्ग में ही कहा है, अन्य मार्ग में तो ऐसा संयम भी होता नहीं है। ऐसा संयम हो तो क्या कह देवे, ऐसा संयम नहीं होते हुए भी वहाँ भी बड़े बड़े टाइटल देने में आते हैं। फिर ऐसा संयम को तो कितना बड़ा नाम देते हैं, अगर होता तो यहाँ भगवान ने उसका नाम दिया है प्रमाद। दूसरों का जहाँ शिखर है वहाँ तो जिन मार्ग की तलेटी भी शुरू होती ही नहीं, उनको तो कि बाह्याचरण की निर्दोषता में इसकी बराबरी में तो कोई आओ, अंतरंग दशा की तो कोई बात भी समझ सकेगा नहीं। ये तो विषय इतना अंतरंग का सूक्ष्म और अरूपी है, उसको तो समझने के भी योग्यता चाहिए। लेकिन बाह्य निर्दोषता, बाह्याचरण की निर्दोषता की परिपाटी जैन मार्ग में जितनी है, उतनी विश्व में कोई संप्रदाय में भी देखने में आती है। कि लौकिक से लोकोत्तरपणा की उसकी प्रकट प्रतीति करने लायक चीज है। मुनि तो अखंड द्रव्य को ग्रहण करके अपने स्वरूप में बारंबार प्रमत और अप्रमत की दशा में आते हैं। जैसे झूला कभी इस साइड में झूल जाता है, उनका कभी इस साइड में, एक साइड में वो स्थिर रहता नहीं। झूला झूलता है तो एक साइड में तो स्थिर रहता नहीं। वैसे मुनि की दशा न संयम के राग में स्थित होती है, न वितराग भाव में स्थित होती है। वितराग भाव में स्थिरता उपयोग की हो जाए तो अंतर्मुहूर्त में ही घंटे भर में तो वो केवल ज्ञान हो जाता है, मूल दिशा में रहता यानी उसकी सिद्धि हो जाती है। साधकपना फिर नहीं रहता, तो साधक दशा में क्षण में वो निर्विकल्प ध्यान में आते हैं, तो क्षण में वो स्वविकल्प बार ऐसा क्षण क्षण में आने जाने का भाव को यहाँ झूला की उपमा देने दी। ऐसी दशा जो है उसको भूमि दशा कहने में आती है। मुनिराज स्वरूप में निरंतर जागृत है, मुनिराज है, उसकी स्वरूप जागृति अंतरंग में निरंतर रूप से बहुत होती है। ऐसे तो साधक मात्र है, वो अपने स्वरूप में जागृत है, लेकिन निदशा की बात बहुत उत्कृष्ट है। चौथा और पांचवा गुणस्थान की बराबरी में मुनि दशा में बहुत अंतर है, इतना वो आगे निकल गया है, फर्क है। जैसे कोई परीक्षा में पास हुए लेकिन फर्स्ट नंबर आने वाले को 90 से ज्यादा प्रतिशत, 90% से भी ज्यादा मिले, और 35-40% वाला भी पास हो जा रहा है, पास को दोनों कहने में आता है, लेकिन बहुत अंतर है। दोनों के पास होने में जैसे मोक्ष मार्ग में प्रविष्ट चतुर्थ गुण स्थान वाला, पंचम गुण स्थान वाला साधक कहने में आता है, लेकिन जिसको साक्षात साधु दशा कहे ऐसा मुनि की आत्म जागृति बहुत होती है। इतनी होती है कि उनको निंद्रा आती ही नहीं, 24 घंटे में उसको निंद्रा आती ही नहीं, आती वो नहीं के बराबर, इसलिए नहीं आती है ऐसे कहते हैं, आती है वो भी उनको बहुत कम समय, वो भी रात्रि को 12 बजे के बाद। इसके पहले तो कभी मुनि को निंद्रा आती नहीं, 10-11 बज गया तो बुगासा आने लगा, ऐसा मुनि को होता। और 4 बजे के पहले पहले तो उनका शयन की जो प्रवृत्ति है पूरी कभी चालू रहती है, उसके बाद उसके पहले पूरी हो जाती है। 12 से 3 तक सुबह शयन करते हैं तो भी वो जागृत दशा में बहुत रहते हैं, नींद बहुत कम आती है, वो भी क्षण क्षण में उसकी प्रमुख अप्रमुख दिशा को चालू है। लेटे रहते हैं फिर भी प्रमथ अप्रमथ दिशा को उनकी चालू रहती है। अप्रमथ दिशा है वो राग को बुद्धिपूर्वक का राग को छोड़कर ध्यान में लीन हो जाना, निर्विकल्प स्वरूप में निर्विकल्प हो जाना, उसको अप्रमथ दिशा कहने हैं। ऐसी दिशा मुनि को क्षण क्षण में प्राप्त होती है, इसलिए मुनिराज इस स्वरूप में निरंतर जागृत है, बहुत जागृत है, निरंतर जागृत है और बहुत जागृत है। इनकी जागृति की बाहर में कोई उपमा देने की चीज है नहीं, ऐसे जागृत है। ऐसे तो मुनि दशा का अंदाजा लगाना बहुत कठिन है, इसलिए तो गुरुदेव ने बहुत संकेत दिया। वो मुनि को देखो जैसे कोई चलने वाले चलते हुए मुनि को कल्पना में लेवे, वो कहते थे कि ये तो चलते फिरते सिद्ध है, मुनि नहीं, चलते फुरते फुरते मुनि नहीं, लेकिन चलते फिरते सिद्ध है। क्या कल्पना है, ऐसे इनकी जो अंतरंग स्थिति है वो इतनी जबरदस्त है कि इसके लिए कोई संकेत आ सकता है, जितना भी कहने लायक है वो भी संकेत मात्र है। इतनी बहुत सी गुंदर में दशा की स्थिति है तो बाहर में कोई भाषा का विषय हो सकता है नहीं। मुनिराज जहाँ जागते हैं वहाँ जगत सोता है, और जगत जहाँ जागते हैं वहाँ मुनिराज सोते हैं। ऐसे तो सारा जगत है वो रात्रि में सो जाता है, वहाँ मुनि सोते हैं नहीं, ये तो एक बाह्य की परिस्थिति है। लेकिन विश्व के प्राणी संयोग में और राग में जागृत है, सावधान है, जागृत मैंने सावधान, जो भी समय समय प्रति कर्म का अवधि चलता है पूर्व कर्म अनुसार, उसमें जगत के प्राणी सावधान है, अलर्ट है, सावधान मैंने अलर्ट है, जो भी राग चलता हो जो भी उदय चलता हो जो भी अपने लाभ नुकसान का हिसाब लगाया हो, लाभ नुकसान में जगत के सब प्राणी जागृत है। वीतरागी निर्ग्रंथ मुनि वहाँ से बिल्कुल उठ गए हैं, वो सो गए हैं। जैसे सोने वाले को सोते हुए बाहर में क्या चल रहा है, कोई घर में चोरी को प्रवेश करके चोरी करे उसको पता चलता नहीं, संयोग लूट जाता है तो पता नहीं चलता है, वैसे भूमि को तो कुछ लूटने का तो भय रहा नहीं। जग को दे दी जग की विधिया, जगत की विधि जगत को दे दी, वो चल गए, फिर उसको लूटाने का तो कोई भय रहता नहीं। मुनिराज जहाँ जागते हैं, जहाँ मैंने अपने स्वरूप में वो जागृत है, परमात्म स्वरूप में वो जागृत हो गए हैं, सारा जगत वहाँ सो गया है। जगत के प्राणी संयोग की सावधानी के वशीभूत होकर परमात्म स्वरूप में वो सो गए हैं, वो परमात्मा का स्मरण भी करते नहीं। परमात्मा मैंने नीज परमात्मा स्वरूप का उसको स्मरण भी नहीं आता। मैं मनुष्य हूँ, मैं फलाना हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, वैसा हूँ, ऐसा मान रखा है, और फिर उसी मान्यता के आधार से उनके सब उनका परिणाम की और बाह्य मन वचन काय की प्रवृत्ति रहती है। उसमें मैं परमात्मा स्वरूप हूँ इसका स्मरण लाने का भी अवकाश रहता नहीं। इसलिए कहते हैं कि जगत वहाँ सोता है, और जगत जहाँ जागता है वहाँ मुनिराज सोते हैं, और जहाँ संयोग में शरीर में सावधान रहते हैं जगत के लोग, बाहर में लाभ नुकसान की प्रवृत्ति में इतने जागृत और संलग्न है कि वहाँ मुनिराज सोते हैं। मुनिराज को उपेक्षा हो गई है, वहाँ कोई लाभ नुकसान का हिसाब मुनि के लिए रहा नहीं। देह जाए पर माया थाय अनुभव न, शरीर का छूट जाने का प्रश्न होवे, फिर भी मायाचार का एक विकल्प तनिक थोड़ा भी विकल्प भी मुनि को उत्पन्न होता है। ये बात ऐसी नहीं है कि अपने मुनि नहीं है तो अपने को क्या काम की है, ऐसी बात है नहीं। ये तो एक भावना की चीज है, मुनिपना है वो साधक की, नीचे वालों की भावना की चीज है। ऐसे लौकिक में तो करते हैं, अमेरिका में ऐसा है, पैसा वाला है, पैसा वाला ऐसा होता है, तो लाख लखपति का हिसाब नहीं, करोड़पति का हिसाब नहीं, अरबपति होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तेरे नहीं है क्यों बात करते हैं, तो तुमको ऐसा चाहिए इसलिए वो बात चलती है। ये बात चलाने में तेरी अभिलाषा छिपी रहती है, वैसे मुनि दशा की महिमा करने वाले, मुनि दशा की भक्ति करने वाले जीव को मुनि दशा की अभिलाषा है। जगत जहाँ जागता है वहाँ मुनिराज सोते हैं, मुनिराज तो निश्चय नयाश्रित मोक्ष की प्राप्ति करें, निश्चय नयाश्रित बहुत लंबा चला है, ये समयसार का एक प्रद पद है, निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करें। भगवान कुंदकुंद आचार्य का एक सूत्र का पद है, मुनिराज कैसे मोक्ष पद की प्राप्ति करते हैं, के निश्चय नहीं का आश्रय करके रे मोक्ष पद की प्राप्ति नए किसको कह रहे हैं? नए है वो श्रुत ज्ञान श्रुत ज्ञान प्रमाण का अंश है। श्रुत ज्ञान प्रमाण का एक अंश को नए कहने में आता है, और जो श्रुत ज्ञान का एक अंश अथवा जिस श्रुत ज्ञान प्रमाण का एक अंश का प्रयोजन नील निश्चय शुद्ध द्रव का आश्रय करने का है, उसको निश्चय नहीं कहने में आता है। इस ज्ञान का अंश का नाम निश्चय नहीं कहते हैं। तो यहाँ निश्चय नयाश्रित ऐसा शब्द पड़ा है। तो नये तो एक अंश है, पर्याय का अंश है, वो भी ज्ञान पर्याय का एक अंश है, उसका क्या आश्रय करें? तो उसका आश्रय करने की बात यहाँ नहीं चली है। लेकिन नये और नये का विषय को अभेद करके यहाँ कथन पद्धति चली है। कथन पद्धति में इस प्रकार की कसम कथन पद्धति में बहुत अध्यात्म का रहस्य छिपा हुआ है। ऐसी बात निश्चय नयाश्रित आश्रित निश्चय नयाश्रित मुनिवर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, इसमें बहुत रहस्य वाली बात है कि जब निश्चय का उपयोग होता है, शुद्ध निश्चय में ज्ञान में प्रकट होता है और निश्चय परमात्मा द्रव्य में उसका अवैधपणे उपयोग से होता है, तब ये नए और ये पर्याय और पर्याय का विषय विषय और विषयी ऐसा भेद रहता नहीं। ऐसा द्रव्य पर्याय का भेद भी जिसमें विलीन हो जाता है समाप्त हो जाता है, ऐसी